तुलसी को नारी का पुत्री रूप सर्वाधिक प्रिय है, फिर माँ का रूप और फिर पत्नी का रूप। वे नारी के रमणीय रूप के प्रभाव की महिमा से भी बहुत अधिक परिचित और परिचित प्रभावित क्या संतरस्त और अभिभूत हैं। मृगनयनी के नयन सर को अस लाग न जाहि, नयन सर ह्रस्व सरल व्यंजनों की योजना तीर की तरह सीधे लगने वाली है। कामदेव के प्रभाव से अछूते लता वृक्ष तालाब नदी समुद्र भी नहीं, फिर साधारण लोगों की क्या बिसात। लेकिन बाबा बहुत कम जतन से ऐसे स्थानों को चित्रण वर्णन करना बचा जाते हैं, खुलते बहुत कम हैं, पकड़ में और भी कम आते हैं। खैर, उनके द्वारा अंकित नारी के इस रूप की चर्चा बाद में। तुलसी ने सीता की वंदना रामचरितमानस के प्रारंभ में इस प्रकार की है। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इस अर्धाली में नारी के तीनों रूपों में सीता की वंदना की गई है। सीता पुत्री है, माँ है और करुणा निधान राम की अतिशय प्रिय है। नारी के तीनों रूपों में एक ही स्थल पर किसी अन्य देवी की स्तुति या वंदना मुझे दिखाई नहीं पड़ी है। तुलसी नारी की निंदा काफी करते हैं, परंतु राम कथा के विन्यास में उन्होंने नारी जीवन का जो चित्रण किया है, उतना विशद चित्रण किसी अन्य मध्यकालीन कवि ने नहीं किया। उतनी करुणा और सहानुभूति भी किसी अन्य कवि ने नहीं दी है। इस क्षेत्र में केवल सूरदास का नाम लिया जा सकता है। आधुनिक काल में नारी जीवन का तुलसी से भी बढ़कर चित्रण केवल प्रेमचंद के साहित्य में मिलता है। कन्या का विवाह करना कठिन होता है, यह कन्या का पिता जानता है, विशेषकर सवर्ण समाज में। कोई ब्राह्मणवादी, ठाकुरवादी, कायस्थवादी अपने लड़के की शादी में दहेज कम नहीं मांगता, यहां उसका वर्णवाद हवा हो जाता है। इस समूचे जटिल विधान में सबसे करुण स्थिति कन्या की होती है। उसके हृदय में सुंदर पति पाने की कामना का अंकुर उगा होता है। पिता को कन्या की कामना से सहानुभूति रखने की फुर्सत और औकात नहीं होती। केवल माँ ऐसी होती है जो कुरूप या अयोग्य जमाता पाने की आशंका से मन ही मन कांपती रहती है। वह पति की परेशानियों को जीवन क्षेत्र में उतर कर बटा नहीं सकती। पिता की अपनी परेशानियां होती हैं, वह भी अपनी लड़की के लिए सुंदर वर चाहता है, लेकिन समाज और धन के ठेकेदार आड़े आते हैं। किस पिता की इच्छा सुंदर और सुशील जमाता पाने की नहीं होती कि उसकी पुत्री का जीवन सुखी रहे। निराला ने सरोज स्मृति में इसी स्थिति की अभिव्यक्ति करते लिखा था, ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मेरी नहीं चाह। गिरजा सुंदर कन्या सरोज और शिव अशुभ वेशी गंवार लड़के। नारद ने सती का हाथ देकर बताया कि और सब तो ठीक है, लेकिन पार्वती को जो पति मिलेगा वह थोड़ा टेढ़ बांकुर होगा, उसके हृदय में काम की भावना ही नहीं होगी। पार्वती को ऐसा पति मिलेगा जो नंगा रहेगा और हृदय में अकाम होगा, विवाह करके जोगी रहेगा। जोग जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एह कह मिलही परिहस्त अस रेख। बात तो झूठी हो नहीं सकती, होई न मृषा देव ऋषि भाखा। हिमाचल तो भाग्य का खेल समझकर चुप हो रहे, लेकिन एकांत पाकर पार्वती की माँ ने पार्वती के पिता हिमाचल से अपनी पीड़ा कही और देव ऋषि ने जो कुछ कहा उसके विरुद्ध जाने की भी प्रेरणा दी। अगर घर बार और कुल अच्छे हों और पुत्र की योग्य हों तभी विवाह कीजिए, नहीं तो चाहे पार्वती कुंवारी ही रह जाए अयोग्य विवाह न कीजिए। नाथ नाथ, पार्वती मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। जौ घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नतक कन्या बरु रहो कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्रियारी। बाद में जब शिव अपने अनुसार बारात भी लेकर आ पहुंचे, पार्वती को ब्याहने और रुद्र का विकट वेश देकर नगर की अबलाओं को विशेष भय हुआ, तो पार्वती की माँ मैना की पीड़ा असह्य हो उठी। मैना कन्या को गोद में बिठलाकर रोने लगी। जिस भगवान ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हें ऐसा बौड़म और बावला वर दिया, मैं तुम्हें लेकर पर्वत से कूद पड़ूंगी, आग में कूद पड़ूंगी, पानी में डूब जाऊंगी, चाहे घर उजड़ जाए, चाहे कलंक लगे, मैं जीते जी यह विवाह नहीं होने दूंगी। जे ही विधि तुम ही रूपु अस दीन्हा, ते ही जड़ बरु बावरु कस कीन्हा, कस किन्ह बरु बौराह विधि, जे ही तुम ही सुंदरता दई, जे फल चही असुरत रही, सो बरस बर बस बबु रही लगा ला गई। तुम सहित गिरते गिरौं, पावक जरौं, जल निधि महु परौं, घर जाऊ अप जसु हो, जग जीवत विवाह न खौं करौं। यह तुलसीदास के एक नारी पात्र का विद्रोह है, तत्कालीन नारी विरोधी व्यवस्था के प्रति। यह विद्रोह कल्पित केवल इस अर्थ में है कि तुलसी ने अपनी आंखों से देखे हुए नारी विद्रोह को पार्वती की मां के साथ जोड़ दिया है। मध्यकालीन समाज में नारियां दमघोटू व्यवस्था में सिर्फ कुड़ती ही नहीं थी, कभी कभी उससे त्राण पाने के लिए कुआं तालाब भी धर लेती थी। आज भी असहाय स्त्रियां कई कारणों से ऊब कर जल मरती हैं, रेल की पटरी के नीचे कट जाती हैं। ऐसी घटनाएं भारत में बहुत दिनों से होती आ रही है, मध्यकाल में होती थी, आज भी गांव में होती हैं। नारी का यह विद्रोह उस व्यवस्था और सामाजिक वातावरण के प्रति होता है जिसमें वह पूर्ण रूप से विवश है। वह व्यवस्था से लड़ने की स्थिति में नहीं है तो अपने को ही समाप्त करके अपनी पीड़ा का अंत करती है। नारी की इस विवशता का कारण उसकी पराधीनता के कारण को नहीं जानते रहे होंगे। प्लीज रिपीट। नारी की इस विवशता का कारण उसकी पराधीनता है। यह पराधीनता उसकी आर्थिक पराधीनता के कारण है। तुलसी इस पराधीनता के कारण को नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन नारी पराधीनता को पहचानते थे। कत विधि सृजि नारी जग माही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। तुलसी को नारी निंदक घोषित करने वाले इस अर्धाली को कभी उद्धृत नहीं करते। वे यह कभी नहीं कहते कि मध्यकाल में कई अन्य कवियों ने भी तुलसी की तरह और तुलसी से भी बढ़कर नारी निंदा की है। वे यह भी नहीं बताते कि किस अन्य मध्यकालीन कवि ने नारी को पराधीन कहा है। उस काल में कन्या स्वेच्छा से विवाह नहीं कर सकती थी। कन्या का पिता अपनी हैसियत के अनुसार वर तलाश करता था। पुष्प वाटिका में राम को देखकर सीता का मन उनकी ओर आकृष्ट हुआ तो उन्हें अपनी इस व्यवस्था का भी ध्यान आया कि वे अपने नहीं पिता के अधीन है। धरि बड़े धीर राम उर आने, फिर अपन पव पितु बस जाने। चित्रकूट में जानकी की मां जानकी से मिली। यह भेंट अत्यंत विपत्ति के समय हुई थी। सीता और उनकी मां दोनों को बहुत सांत्वना की आवश्यकता थी। दिन भर सीता अपनी मां के डेरे पर रही। शाम होते ही उन्हें ध्यान आया, यहां बसब रजनी भल नाही। पति की इच्छा के विरुद्ध या उनकी अनुमति के बिना मायके ठहरना पत्नी के लिए अनुचित यानी उसके वश में नहीं। इसी विवशता और पराधीनता को मध्यकालीन भारतीय समाज नैतिकता में रूपांतरित करके स्त्री को पूरी तरह चार दीवारी के अंदर रखता था। अनसुया ने सीता को जो उपदेश दिया है उसमें कई बातें आज भी अनुचित नहीं है। पतिव्रता का अनादर कोई व्यवस्था नहीं करेगी, लेकिन कुल मिलाकर अनसुईया का सीता को दिया गया उपदेश उस मध्यकालीन एकांगी नैतिकता पर आधारित है जो पुरुष और स्त्री को समाज में बराबरी का स्थान नहीं देता था। इस विषमता को राम का चरित्र तोड़ता है। इस विषमता युक्त व्यवस्था की एकांगिता और हृदयहीनता से तुलसी को भी चोट पहुंचती थी। जिस प्रकार राज्य व्यवस्था की दृष्टि से तुलसी का आदर्श राम राज्य है, उसी प्रकार विवाह की दृष्टि से तुलसी का आदर्श प्रेम विवाह प्रतीत होता है। इसलिए उन्होंने विवाह के पूर्व सीता और राम का मिलन पुष्प वाटिका में कराया है। राम को देखकर सीता के हृदय में जो आकर्षण विक्षोभ उत्पन्न होता है और उसका जो चित्रण तुलसीदास ने किया है, वह कन्या के हृदय में छिपी हुई मासूम कामना से परिचित सहृदय कवि ही कर सकता है। पुष्प वाटिका में सीता राम का परस्पर दर्शन, राम की वन यात्रा, चित्रकूट में राम भरत का मिलन संभवतः रामचरितमानस के उत्कृष्ट काव्य स्थल हैं। पुष्प वाटिका में किशोर वय के दो व्यक्तियों के प्रेमोदय का वर्णन चित्रण है। उस चित्रण की मार्मिकता का आधार वह स्वाभाविक और सहज संकोच है जो इस किशोर वय के प्रेमोदय की विशेषता होती है। किशोरी सीता ने सुना कि वाटिका में दो सुंदर राजकुमार आए हैं, तो वे किशोरी मृगी के समान चकित और सभय होकर चारों ओर देखने लगी। सभय इसलिए कि कहीं कोई यह ना देख ले कि वे राजकुमारों को देखने के लिए आतुर हैं। जवान लड़की सुंदर लड़के को देखने के लिए चारों ओर जल्दी जल्दी नजर दौड़ा रही है। उसके मन में आतुरता, व्यग्रता, संकोच, भय और सुंदर रूप देखने की लालसा सब कुछ है, लेकिन इन सबके साथ वह स्वयं कितनी सुंदर लग रही है यह भी देखने की बात है। चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभीत। राम ने सीता को पहले देखा, उनके नयन सीता के चंद्रमुख के चकोर हो गए। परम ब्रह्म अज अमर राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, साधारण राजकुमार हो गए और किशोरी सीता पर मुग्ध हो गए। तुलसी अपने राम को किसी और के मुखचंद्र का चकोर बनाए यह असंभव लगता है, लेकिन यह तुलसी ने चित्रित किया है। राम बात तो अनुज से कर रहे हैं, लेकिन मन सीता के रूप में लगा है। उनका मन मधुप के समान सीता के मुख कमल के छवि मकरंद का पान कर रहा है। करत बत कही अनुज सन मनुष्य रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप ईव पान। राम की इसी रूप को सीता ने देखा, देखकर वे स्नेह विभोर हो गई। जिस प्रकार राम उनके मुखचंद्र के चकोर हो गए थे, उसी प्रकार वे राम के मुखचंद्र की चकोरी हो गई। उन्होंने नेत्रों के मार्ग से लाकर राम के रूप को मन में स्थित कर लिया, आंखों का कपाट बंद कर लिया। जब देर हो गई और सखी ने झकझोरा और वे आपे में आई, तो सबसे पहले उन्हें पिता के प्रण को याद करके क्षोभ हुआ। सुमेरी पिता पनु मनु अति क्षोभ क्षोभा। यह क्षोभ उन्हें अपनी विवशता के ही कारण आया होगा। अगर उन्हें राम से बात करने और ब्याह करने की स्वतंत्रता होती तो यह क्षोभ नहीं होता। सीता को प्रेम के कारण परवशा देखकर सखियों को बहुत डर लगा। एक सखी ने उन्हें इशारा समझाते हुए कहा, कल इसी वक्त यहीं फिर चली आइएगा, यानी फिर मुलाकात कर लीजिएगा, आज चलिए बहुत देर हो गई है। सीता ने सखी की यह गूढ़ गिरा सुनी तो देर हो गई है यह समझकर मन में डरी। यह भी सोचा कि वे तो पिता के वश में है। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भय उ बिलंब मातु भय मानी। धरि बड़े धीर रामु उर आने, फिर अपन पौ पितु बस जाने। नारी की पराधीनता का उल्लेख तुलसी ने पार्वती के प्रसंग में किया था। उन्होंने सीता के हृदय में क्षोभ और विवशता का उल्लेख किया है। निश्चय ही इस पराधीनता और विवशता की पीड़ा तुलसी को थी। तुलसी ने श्रृंगार का वर्णन बहुत मर्यादित ढंग से किया है। उनके यहाँ नारी का रीतिकालीन नायिका भेद वाला रूप नहीं उभरा है, फिर भी तुलसी नारी रूप से काफी प्रभावित कवि मालूम पड़ते हैं। जहाँ कहीं अवसर मिला है, उन्होंने मुनियों उदासियों की बड़ी दुर्गति कराई है। मोहिनी के रूप पर मुग्ध नारद की हास्यास्पद स्थिति का वर्णन, जप तप कछु न होई तहि काला, हे विधि मिले कौन विधि बाला। स्वयंवर सभा में मोहिनी कपिमुख नारद की ओर देखना भी नहीं चाहती और मुनि महाराज उछल उछल कर उसे अपना मुंह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही। कामदेव का प्रभाव ऐसा होता है कि नर नारी देवता मुनि ज्ञानी पशु पक्षी प्रकृति सब विवश हो जाते हैं। ऐसे अवसर पर विवेक भग जाता है, सदग्रंथ पर्वत कंदराओं में छिप जाते हैं। सभी स्त्री पुरुष जाति के चर अचर अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर कामदेव के वशीभूत हो जाते हैं। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। ऐसा संसार में कौन है जिसे मृगनयनी का नयन सर नहीं लगा। मृगनयनी के नयन सर को अस लाग न जाही। तुलसी के यहां नारी नयन सर ही नहीं मारती, उसका समस्त मोहक सौंदर्य मंगल विधायक भी है। वह करुणा से युक्त सहानुभूतिमय और उदार भी है। जनकपुरी वन मार्ग पर पड़ने वाले गांवों और अयोध्या की नारियां राम और सीता के रूप पर मुग्ध होती हैं, उनसे सहानुभूति रखती हैं, उनका हृदय अपार शुभकामना से पूर्ण है। रावण बहुत अन्यायी है, किंतु उसकी स्त्री विवेक से युक्त है। त्रिजटा बंदिनी सीता की सहायिका है। शबरी राम और लक्ष्मण का अपूर्व सत्कार करती है। शुभ अवसरों पर तुलसीदास मंगल गान करने वाले सुंदरी स्त्रियों को नहीं भूलते। वे कलकंठी कोकिल बैनी होती हैं। ये स्त्रियां तुलसी साहित्य में मंगल और सौंदर्य की जीवित प्रतिमाओं के समान झुंड के झुंड दिखलाई पड़ती हैं। ये स्त्रियां प्रायः गान अवश्य करती हैं। जनकपुरी की स्त्रियां झरोखों से राम लक्ष्मण को अनुराग पूर्वक देखती हैं। वे हृदय में प्रसन्न हैं, पुष्प वर्षा करती हैं। जुबती भवन झरोख नहीं लागी, निरख ही राम रूप अनुरागी। हिय हर्षहिं वर्षहिं सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद। पुष्पवाटिका में सखियां संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। राम ने शिव का धनुष तोड़ा है और उनका विवाह होने वाला है। यह समाचार सुनकर अयोध्या के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और नारियां जह तह जूथ मिल भामिनी, साज नव सप्त सकल दुति दामिनी। मिधुबदनी मृग बाल कलोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठ लजानी। सीता विवाह के अवसर पर जनकपुर की स्त्रियों की शोभा और गान का वर्णन। वे 16 श्रृंगार से सुसज्जित हैं, मत कुंजर गामिनी हैं। उनका सुंदर गान सुनकर मुनि ध्यान त्याग देते हैं और काम कुकिलाएं भी लज्जित हो जाती हैं। उनके मंजिर नुपुर कंकण सब ताल की गति पर बज रहे हैं। ये स्त्रियां सीता को विवाह मंडप में ला रही थी। चलि ल्याहसी तहि सखी सादर, सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्याग ही, काम को किल लाजही। मंजिर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजही। राम सीता और लक्ष्मण के अवध लौटने पर अयोध्या की नारियों का हर्षोल्लास। दधि दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भर भर हेम थार भामिनी, गावत चलि सिंधुर गामिनी। बहुत से स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर पुष्पक विमान को देखने लगीं। उसे देखकर वे मधुर स्वर में मंगल गान करती हैं। कोई शुभ अवसर आते ही स्त्रियों का गान फूट पड़ता है। भारतीयों का कोई शुभ समारोह स्त्रियों के कलगान के बिना नहीं होता था। गांव में अब भी यही स्थिति है। अयोध्या नगरी उस अवसर पर समुद्र के समान राम रूप पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ने लगी। समुद्र की लहरें पूर्णमासी की रात में ऊपर उठती हैं। इन लहरों में कोलाहल का रौ भी होता है। अयोध्या लहरें मारते हुए समुद्र के समान बन गई। कल गान करते हुए नारियों का झुंड समुद्र की लहरों के समान हो उठा। राकस ससी रघुपतिपुर सिंधु देखि हरशान, बढ़्य कोलाहल करत जनु नार तरंग समान। गाती हुई नारियों की उल्लसित तरंगों की उपमा पर ध्यान दीजिए और अनुमान कीजिए कि तुलसीदास नारी सौंदर्य से कितना गहरे प्रभावित होते थे। इसी के साथ एक और अर्धाली पर गौर कीजिए। प्रगट ही दुरही अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दमक ही दामिनी। तुलसी में श्रृंगार और नारी सौंदर्य की कमी नहीं है। उनकी कविता में स्वाभाविक नारी सौंदर्य रीतिकालीन कवियों से बेहतर चित्रित है। लेकिन एक तो उनके यहाँ नारी सौंदर्य का उच्च श्रृंखल चित्रण नहीं है, दूसरे उनके यहाँ नारी केवल रमणी नहीं है, वह कन्या, पत्नी और माँ तीनों है। सीता का चरित्र ऐसा है कि वे अपने पति के दुखों की सहभागिनी बनती है। सीता का चरित्र रीतिकालीन नारी रूप को खंडित करता है। सीता राम के साथ जीवन और वन के बीहड़ मार्गों पर राम का साथ देती हैं। वे वन के कष्टों के भय से पति का साथ छोड़कर राजभवन में नहीं बैठ रहती। राजभवन में बैठ रहती और विरह की नौ दसों दशाओं को प्राप्त होती तो रीतिकालीन नायिका बनकर रह जाती। उनके दुख में उनका कष्ट और संघर्ष भी शामिल है, इसीलिए उनका दुख और विरह भी महान है। सीता का दुख राम से कम नहीं, संभवतः अधिक है। राम के दुख को अत्यंत तीव्र रूप में चित्रित करने वाले महाकवि भवभूति सीता के दुख को नहीं भूले हैं। भागीरथी सीता की माँ धरती को आश्वासन देती हैं तो धरती कहती है, सीता को उत्पन्न करके मैं आश्वासन कैसे धारण करूं? सीता प्रसूय कथ अश्वसिमी, सीता पृथ्वी कन्या है, वे राम की जीवन सहचरी हैं। सीता का चित्रण तुलसी ने उस भारतीय पत्नी के रूप में किया है जो आपात काल में खरी उतरती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल परखियचारी। विराज कन्या और सामराज्ञी का सुख कहाँ भोग पाती हैं? हाँ, विपत्ति के दिनों में पति की सेवा उत्साह पूर्वक करने में सुख अवश्य अनुभव करती हैं। वन गमन के अवसर पर उनका उत्साह देखिए। मोहि मग चलत न हो यही हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करिहौं, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहौं। पाय पखारी बैठी तर छाही, करहियूं बाव मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तन देखें, कह दुख समव प्राण पति देखें। सम महि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटिहि सब निसिदासी। तुलसी केवल स्त्रियों से ही पातिव्रत्य धर्म की उपेक्षा नहीं करती। उनके राम भी पत्नीव्रती थे। राम राज्य में पुरुषों का जो वर्णन किया गया है वे सब भी एक पत्नीव्रती हैं। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। तुलसी को नारी निंदक घोषित करने वाले विद्वानों को पता लगाना चाहिए कि मध्यकाल में किस अन्य कवि ने पुरुष के लिए एक नारी व्रत की व्यवस्था दी है। तुलसी असुविधाजनक कवि हैं। वे कई समकालीन प्रतिष्ठित कवियों और आलोचकों को भी परेशान करते हैं। तुलसी के यहाँ खल नारी पात्रों में प्रमुख शूर्पणखा, मंथरा और कैकेयी हैं। शूर्पणखा तो बहुत कुछ मोहिनी के रूप पर विमुग्ध नारद का नारी संस्करण है। वह भी हास्यास्पद है। राम और लक्ष्मण पहले दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं। राम अपने को विवाहित बताकर, लक्ष्मण अपने को राम का दास बताकर शूर्पणखा को टालते हैं। मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो राम का सेवक हूं। राम से विवाह करोगी तो मौज में रहोगी। राम का विवाह हो गया है तो क्या हुआ? राम बड़े हैं, राजा हैं। जो कछु कर रही उन्हीं सब छा जा। यहां जो कछु का मतलब अनुचित। एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करके अनुचित भी करेंगे तो वे राजा हैं। उन्हीं सब छा जा में दूसरे विवाह का अनौचित्य और राम ऐसा कदापि न करेंगे इस निश्चय के कारण विनोद भी है। विवेकहीन कामी पात्रों का मजाक उड़ाने में तुलसी सिद्ध हस्त है। स्त्रियों की संकीर्ण हृदयता, परद्वेष, चुगलखोरी, त्रयाचरित्र, त्रयाहट आदि का चित्रण तुलसी ने मंथरा और केकई के माध्यम से किया है। मंथरा हिंदी प्रदेश में चुगलखोर और परद्रोही स्त्रियों का प्रतीक बन गई है। मंथरा ऐतिहासिक पात्रों की अपेक्षा कम नहीं बल्कि ज्यादा मशहूर है। उसकी उक्ति, को नृप हो ही हम ही का हानि, चेर छाड़ अब होब की रानी, तो निष्क्रिय और अपने को तटस्थ कहने वाले लोगों का वेद वाक्य बन गई है। मंथरा और कैकेयी का संवाद पढ़कर अनुमान किया जा सकता है कि तुलसी ने हिंदी प्रदेश की मंथरा जैसी औरतों और उनके मुहावरों का भी अध्ययन पर्यवेक्षण कितनी गहराई से किया था। औरतों की, खास तौर पर गांव की बुढ़ी वाचाल औरतों की जुबान की मुहारे बाजी सुनने की चीज होती है। किसी बोली के मुहावरे का ताजा मजा लेना हो तो दो बूढ़ियों का संवाद सुनिए, सौभाग्य मिले तो झगड़ा देखिए और सुनिए। पढ़ी लिखी औरतों की बात तो हम नहीं करते, लेकिन साधारण औरतें मुहावरों के बिना पांच वाक्य भी नहीं बोलती। कैकेयी रूप गर्विता और दशरथ के बुढ़े प्यार में बिगड़ी हुई युवती रानी है और मंथरा उसकी बुढ़ी लेकिन अंतरंग सेविका। मंथरा ठेठ शेक्सपियरीय पात्र है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति के चित्त को द्वेष और आशंका के विष से भर देने में उसका सानी नहीं। वह कैसियस और इयागो से कम कुशल नहीं है। अपने शिकार की मनः स्थिति के परिवर्तनों और अपने वाक्यों के उस पर पड़ने वाले प्रभावों को ताड़ने में वह अचूक है। अपने अपने दांव में चतुर व्यक्तियों के संवाद में उक्ति श्रृंखला की विशेषता होती है, यानी एक व्यक्ति जो बोलता है दूसरा उसी के द्वारा प्रयुक्त किसी शब्द का प्रयोग करके अपने उत्तर को ज्यादा घातक बनाता है। कैकेयी ने मंथरा को बिलखते हुए देखकर कारण पूछा तो मंथरा चुप रही। उसके चुप रहने पर कैकेयी ने कहा, अच्छा तेरे गाल बहुत बड़े हो गए हैं, मतलब तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई है, तू बहुत ढीठ हो गई है। मालूम पड़ता है लक्ष्मण ने तुझे अच्छी तरह सीख दे दी है, तेरी मरम्मत कर दी है। हंस कह रान गालू बड़ तोरे, दिनिक लखन सिख अस मन मोरे। इस पर मंथरा का उत्तर, माई हमें कोई सीख क्यों देगा और मैं किसके बल पर गाल करूंगी। कथ सिख दे हम ही को माई, गाल करब के ही कर बल पाई। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जिन ही जने सुजे दे जुब राजू। भयउ कौ सिलिहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उन नाहिन। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोक मोर मन छोभा। पुतु विदेश न सोचु तुम्हारे, जानतिहु बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भू कपट चतुराई। कहने का मतलब यह कि तुम तो सीधी सरल हृदय की हो, कौशल्या राम और दशरथ की चालाकी तुम क्या समझो। जिसको अपने रास्ते पर लाना हो उसको सीधा और ईमानदार कहना और सारी दुनिया को उसका दुश्मन बताना कपटाचारियों का पहला पैंतरा होता है। जो हमें अच्छा सरल कहे वह एक तो हमें ठीक से समझता है, दूसरा हमारा इतना ही तो है कि हमें इतने सारे दुश्मनों से बचाना चाहता है। लेकिन कई इतनी जल्दी फंसने वाली नहीं थी। उसने मंथरा को डांट कर कहा, घर फोड़ने वाली, तूने ऐसी बात दोबारा कही तो तेरी जुबान बाहर निकलवा लूंगी। पुनि अस कबहु कहसि घर फोरी, तौ धर जीभ कढ़ाओ तोरी। काने लंगड़े कुबड़े बहुत कुटिल और कुचाली होते हैं, उसमें भी स्त्री और चेरी तो विशेष। इतना कहने के बाद कीकई को लगा कि वह जरूरत से ज्यादा गुस्से में आ गई है, तो यह लगा हो कि मंथरा के कुबड़ का मजाक उड़ाकर उसने बहुत ज्यादती की है, इसीलिए यह दिखाने के लिए वह विनोद कर रही थी। हंस पड़ी और कुबड़ी मंथरा को प्रियवादिन कहकर संबोधित करने लगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिस विशेषी पुनि चेरी कही भरते मातु मुस्कानी। कीकई के पूछने पर मंथरा ने उत्तर दिया, एक ही बार बोलने से आपने मेरी सारी आशाएं पूरी कर दी, अब दूसरी जिह्वा लगाकर मैं क्या बात करूं। एक जिह्वा तो आपने मेरी निकलवा दी, मेरा कपाल सिर तकदीर ही फोड़ने योग्य है। जो भला कहते हुए भी आपको बुरा लगता है, जो आपके सामने झूठी बातों का वो सच्चा बनाकर कहते हैं, वे ही आपको प्यारे लगते हैं। मैं भी अब ठकुर सुहाती, ठाकुर मालिक को अच्छी लगने वाली बात कहूंगी, नहीं तो चुप ही रहूंगी। मुझे तो ब्रह्मा ने ही कुरूप बनाकर परवश किया, जो मैंने पूर्व जन्म में बोया था वही काटा, जो दिया था वह पाया। कोई राजा हो मुझे क्या, मुझे चेरी से रानी नहीं बनना है। क्या करूं, मेरा स्वभाव ही जला देने योग्य है, जो तुम्हारा अनभल देखा नहीं जाता। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। फोरई जोग कपारु अभागा, भले ऊ कहत दुख रौर ही लागा। कह ही झूठ फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करऊ करई मैत्माई। हम हु कह भी अब ठकुर सुहाते, ना हित मौन रहब दिनु राते। हरि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सोलूना लही अजो दीन्हा। को निरप का हो हम ही का हानि, चेर छाड़ी अब होब किरानी। जा रही जोग सुभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। थोड़ा आगे कीकई द्वारा घर फोरी विशेषण का प्रत्युत्तर उसी शब्द प्रयोग के द्वारा, तुम तो पूछती हो और मुझे बताने में डर लगता है, तुमने मेरा घर फोरी नाम रख दिया है। तुम पूछहु मैं कहत डराऊं, धरे हु मोर घर फोरी नाऊं। मंथरा ने बहुत गढ़छोल की बातें की। भामिन अब तुम दूध की माखी हो गई, राम राजा होंगे, लक्ष्मण उनके नायब और भरत बंदी गृह में कैद। केकई का मन डिगना शुरू हुआ और मंथरा को शिकार जाल में फंसता हुआ दिखलाई पड़ा तो उसने दांतों से जुबान दबा ली। यह मंथरा की ऐसी क्रिया रही होगी जिसे केकई ने नहीं देखा होगा। वस्तुतः यह अब फंसा की शारीरिक व्यंजना है जिसे देखकर ही जाना जा सकता है। वस्तुतः मंथरा की यह क्रिया रंगमंच पर होने वाला जनांतिक अभिनय है जिसे पाठक सामाजिक तो समझ और देख लेते हैं लेकिन अन्य पात्र नहीं देख सुन पाते। मंथरा की यह क्रिया पाठकों के मन में उसकी कुटिलता को और उजागर कर देती है। केकई मंथरा के द्वारा गुमराह होना शुरू होती है। अंधविश्वास की प्रक्रिया से व्यक्ति गुमराह होने से पहले आत्मविश्वास खोता है। केकई राम कौशल्या दशरथ और भरत के स्वभाव पर संदेह ही नहीं कर सकती थी बिना आत्मविश्वास खोए। जो कुछ उसका अपना अनुभव था उस पर विश्वास करने के बजाय जब वह मंथरा के कहे पर भरोसा करने लगी तो उसके दिमाग में सपनों और सगुन असगुन की बातें आने लगी। सुन मंथरा बात फुर तोरी, दहिनी आँख नित फर कई मोरी, दिन प्रति देखौ रति सुकु सपने, कहौ न तो ही मोह बस अपने, काह करौ सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बाम न जानौ काऊ, अपने चलत न आज लगी अनभल, काहुक कीन्ह के ही अध एक ही बार मोही, दे अ तुसह दुख दिन्ह, नै हर जन्म भरव भर जाए, जियतन कर बिसवत सिवकाय। मंथरा ने केकई से कहा था, तुम सीधी हो, राजा का कपटाचार समझ नहीं पाती। केकई भी अपने बारे में कहती है, अपने चलत न आज लगी अनभल काहुक किन, के ही अध एक ही बार मोही, दय आ दुसह दुख दीन। मंथरा के चाल में फंस जाने के बाद केकई उसके कहने पर सब कुछ करने को तैयार हो जाती है, यहाँ तक कि अपने पति और पुत्र को भी त्याग कर सकती है, कुएं में कूद सकती है। परिकूप तू अबचन पर सकौ पुत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखी बड़ कसना करब हित लागी। राजा दशरथ और केकई के संवाद से पता चलता है कि तरुणी वृद्ध के लिए सचमुच विष होती है। केकई अपने वृद्ध पति पर इतना हावी है कि दशरथ अपनी विवशता भली भांति महसूस करते हैं, बीच बीच में अशक्त पतियों के तरह ताकते दिखाते हैं। सॉरी प्लीज रिपीट, बीच बीच में अशक्त पतियों की तरह भुनभुनाते जरूर रहते हैं। व्यक्तित्व और शारीरिक शक्ति के अभाव में जुबान की ताकत दिखाते हैं। वे केकई की इच्छा पूर्ति के लिए क्या नहीं कर सकते। उसकी इच्छा अच्छी है या बुरी इसे समझने की बात उनके दिमाग में नहीं आती। केकई को मनाते हुए उनकी ठेठ सामंती डींग देखिए। कामग्रस्त सामंत ने प्रजा का हित मन हित भी चहेती बीबी को सौंप दिया है। केकई से बोलना शुरू करते समय दशरथ का मन एक ही प्रिय संबोधन से नहीं भरता। वे एक साथ उसे सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी गजगामनी इन चार विशेषणों से संबोधित करते हैं। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोह सुनाओ गजगामनी निज कोप कर, अनहित तोर प्रिया केहु कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमुल चहलीन्हा, कहु के ही रंग कहि करौ नरेसु, कहु के ही निरपहि निकासौ देसु, सकौ तोर अरि अमरौ मारी, काह काटि बपुरे नर नारी, जानसि मोर सुभाव बरोरु, मनु तव आनन आनन चंद चकोरु, प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। अगर संदर्भ न ज्ञात हो तो पता लगाना मुश्किल है कि ये पंक्तियां दशरथ की है या रावण की। वृद्ध राजा दशरथ युवती रानी केकई को मनाते हुए उसकी ओर हाथ भी बढ़ा रहे हैं और वह परसत पानी पति नेवर आई उनका हाथ झटक देती है। यह चित्र कल्पित करके सोचिए तो पता चलेगा कि तुलसी तरह तरह की नारियों के स्वभाव और उनकी विशिष्ट स्थितियों के बारे में काफी कुछ जानते थे। निराला के साहित्य साधना के प्रथम खंड में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दिखाया है कि निराला तुलसी के इस छंद को स्वर के किस उतार चढ़ाव से पढ़ते थे। उसे यहाँ उद्धृत न करना प्रस्तुत पुस्तक को पढ़ने वालों के साथ अन्याय होगा। वह निराला तुलसीदास से भी उनके शब्दानुप्रास वाली पंक्तियां छांटकर दोहराते थे। के हे तुरानी रिपीट के हे तुरानी रिसानी परसत पानी पति ही निवराई निवारई प्लीज रिपीट अगेन ऑल के हे तुरानी रिसानी परसत पानी पति ही निवारई। इसे धीमी गति से पढ़ते मानो दशरथ धीरे धीरे केकई की ओर हाथ बढ़ा रहे हों। मानहु सरोष भुअंग भामिनी विषम भांति निहारई। उनका स्वर बलखाता हुआ उठता मानो नागिन फुफकार रही हो। दो बसाना रसना दसन बर मर मठा हरु देखई। स्वर कुछ उतरता समतल भूमि पर बढ़ता मानो केकई का सौंदर्य देखकर वह मोह में पड़ गए हों। तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक लेखई। यहाँ उनका स्वर शांत स्निग्ध हो जाता मानो अब ट्रेजेडी का अंत आ गया हो। इस उद्धरण से पता चलता है कि निराला उस चित्र को देखकर मन में इन पंक्तियों को पढ़ते थे, उस चित्र को जिसे तुलसीदास ने इन पंक्तियों से खींचना चाहा था। चित्र का हल्का गहरा रंग निराला के स्वर के उतार चढ़ाव में आकर प्रकट होता था। अच्छी कविता का रस ग्रहण कर पाने और ठीक से पढ़ पाने की यही कसौटी है। वास्तविक घटनाओं की सम विषम क्रियाओं की अर्थ संपदा सम विषम ध्वनियों में अनुशासित होकर बंधती है। उसे पा लेने वाले पाठक के स्वर के उतार चढ़ाव में भी वह प्रकट होती है। यहाँ तो नहीं लेकिन अवसर हुआ तो कहीं दिखाया जाएगा कि तुलसी की कविता का रस कोश हमारे युग में सबसे अधिक रामचंद्र शुक्ल और निराला के हिस्से में आया है। अस्तु। कहने का तात्पर्य यह कि तुलसीदास को एक झटके में नारी निंदक कह देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने नारी निंदा की है, खुलकर की है। इस विषय में तुलसी की सफाई देने की कोशिश भी उचित नहीं है। लेकिन तुलसी ने सिर्फ नारी निंदा ही नहीं की है, उन्होंने अपने युग के नारी जीवन का अपूर्व एवं मार्मिक चित्रण भी किया है। यह चित्रण उनकी नारी निंदा से कहीं अधिक वास्तविक सजीव और महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में किसी अन्य हिंदी कवि ने नारी की पीड़ा और उसकी पराधीनता को उसकी विविध रूपता को भी इतनी अच्छी तरह नहीं चित्रित किया है। तुलसी के एकाद दोहों में सती प्रथा को आधारित करके असामान्य उपमान और वक्तव्य प्रस्तुत किए गए हैं, हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। परमार्थ की प्राप्ति तो सती को चिता में जल जाने से मिलेगी। तुलसी सती का आदर्श वही मानते थे जो रूढ़िग्रस्त समाज में परंपरा से गृहित था। लेकिन वे यह भी देखते थे कि स्त्रियां चिता से उठकर अधजली भाग निकलती है। चिता से निकलकर जलती हुई भागती स्त्री का दृश्य कितना लोमहर्षक है। मध्यकाल में हमारे देश में ऐसे दृश्य आए दिन लोगों के सामने आते होंगे। साहित्य में इसका चित्र मुझे तुलसी के यहाँ ही मिला। परमारथ पहचानि मति लसती विषयम लपटानि, निकसि चिताते अध जरती मानहु सती परानि। इस अमानुषिक सती प्रथा का विरोध तो नहीं, संभवतः मृत पति के शव के साथ स्त्री के मर जाने को परम पुण्य का कार्य समझते रहे होंगे, किंतु जीवित रहते हुए मृत पति के वियोग सहन को भी वे सती होने के समान मानते हैं। तुलसी का तर्क कुछ कुछ इस प्रकार का है, चिता में भस्म होकर सती हो जाना सर्वोत्तम है, किंतु यह दुष्कर है, ऐसा कोई विरला ही कर सकता है। चिता में भस्म न होने वाली, मृत पति के वियोग में पूरा जीवन काट देने वाली स्त्री भी सती है। सती केवल चिता पर भस्म होने वाली ही नहीं है, तुलसी के दोहों से ऐसा लगता है कि उस काल में सर्वत्र विधवा को विवश करके जलाया ही नहीं जाता था। प्रिय लोग उसे चिता में जलकर सती होने से रोकते भी थे। कुछ भी हो, तुलसी इस प्रथा की अमानवीयता से प्रभावित हुए थे। शीश उदाहरण किन कहे बरजी रहे प्रिय लोग, धरहि सती कहावत जरती नाह वियोग। तुलसी के जीवन से संबंधित एक घटना भी किंवदंती के रूप में प्रचलित है कि उन्होंने एक विवाह उन्होंने एक विधवा के पति को जीवित कर दिया था। उर्दू के महान कवि शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी ने तुलसी विषयक इस किंवदंती को आधार बनाकर एक लंबी कविता लिखी है। देश प्रेम, देश की प्रकृति, देश की जनता से प्रेम करने के साथ ही भाषाओं से प्रेम में प्रकट होता है, लेकिन सच्चे देशभक्त को देश की भाषाओं से प्रेम होगा, यह भी जनता के प्रति प्रेम होने का ही अन्य रूप है। देशवासियों से प्रेम तो देशवासियों की भाषा से भी प्रेम। तुलसी के समय में फारसी राज्याधिकारियों की भाषा थी और संस्कृत धर्माधिकारियों की। संस्कृत और फारसी दोनों जन भाषाओं का गला दबोचे थी। जैसे हमारे समय में गांधी जी को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन उन्हें गुजराती, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से अपार प्रेम था। गांधी की का अंग्रेजी ज्ञान और अंग्रेजी का विरोध दोनों प्रसिद्ध है। इसका गहरा संबंध उनके देश प्रेम से है। यही बात तुलसीदास के बारे में समझिए। तुलसीदास के संस्कृत ज्ञान के विषय में किसी को संदेह नहीं। भारत में ऐसे बहुत कम कवि पैदा हुए होंगे जिन्होंने ज्ञान के विविध क्षेत्रों का इतना गहन अध्ययन किया हो, लेकिन तुलसी ने काव्य रचना संस्कृत में नहीं की, भदेश भाखा में की। तुलसी ने अवधि और ब्रज की पंक्तियों में संस्कृत और फारसी के शब्द इस खूबी से घुलाए मिलाए हैं कि वे अपने अस्तित्व का बोध नहीं कराते, लेकिन अनुमानतः तुलसी फारसी भी जानते थे। उनकी रचनाओं में फारसी आदि भाषाओं के शब्द अवधी और ब्रजी की प्रकृति में घुल मिलकर प्रयुक्त हुए हैं। उनके यहाँ ऐसे अनेक शब्द मिल जाएंगे जिनका प्रयोग करने के लिए आज भी हिंदी लेखकों को साहस से काम लेना पड़ेगा। गनि गरीब ग्राम नरनागर, बहुजीनस प्रेत पिसाच जोगी, जमात बरनत नहीं बनाए, राम चाप तोरब सक नाही सक शक। गुनह लखन कर हम पर रोशु, भय बकसीस जाच कन्हि दीन्हा, कुमरी करी कबूली के कई, करी कबूली कबूल करवा के। कुमत कुबिहग कुलह जन खोली तात गलानि करहु जिय जाए जाए जाया व्यर्थ। इन्ह कर हुनर न कब निहुत ओरा तब कछु कीन राम रुख पाए खबरी लिन्न सब लोग नहाए। तुलसी का अत्यंत प्रिय शब्द गरीबी नवाज है। इस विशेषण का प्रयोग वे राम के लिए करते हैं। राम का प्रिय विशेषण फारसी में, रामचरितमानस से भी अधिक ऐसे शब्दों का प्रयोग कवितावली दोहावली में है। यहाँ ऐसे शब्दों का केवल कतिपय उदाहरण दिए जा सकते हैं।